धवला पुस्तक चौथी, सॉरी धवला पुस्तक छठवी, लेक्चर नंबर 14। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य,
ओम शुद्धात्मने नमः।
नमो अरिहंताणं,
नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्जायाणं, नमो लोये सौवसाहुणं,
तिहुवनशिरसे हरये भवभयगभ्रादुनिगदेपणं,
सिद्धे जीवोत्थान
आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धवला नामक टीका है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। उसमें प्रथम खंड जीव स्थान जो चल रहा है अपना, उसमें ये चूली का नामक अधिकार है, और ये छठवीं पुस्तक के पृष्ठ संख्या हम 142 पर आ गए, 142। पहला जो पहली चूलिका थी प्रकृति समुद्र कीर्तन, दूसरी स्थान समुद्र कीर्तन, फिर तीसरी में पहला महादंडक और चौथी में द्वितीय महादंडक देखा था। अभी पांचवी चूलिका चलेगी। यहाँ लिखा है ना पंचमी चूलिया ऊपर प्राकृत में, वहां से पढ़ेंगे अभी हम। तथ्य इमो तदियो महादंडवो कादवो भवदी, यहाँ एक आंकड़ा लिखना है। उन तीन महादंडकों में से यह तृतीय महादंडक कहने योग्य है। महादंडक तीन है, उसमें से तीसरा, चूली का ये पांचवी है, महादंडक तीसरा है। शंका, इस महादंडक के तृतीयपना नहीं करने पर भी जाना जाता है, क्योंकि इनके दो पूर्व दंडक पाए जाते हैं, यानी दो दंडक हुए हैं, अब ये तीसरा है, ये कहने की क्या जरूरत थी, ये उनका कहना है। समाधान, नहीं, क्योंकि युक्तिवाद में अकुशल ऐसे शब्द नयानुसारी शिष्यों के अनुग्रह के लिए यहाँ पर इस महादंडक के तृतीय शब्द कहा गया है, यानी वो युक्ति से जान सकते हैं, पहले दो बताए, परंतु कुछ तो शब्दों में बताने पर ही उनको ख्याल आता है, ऐसे शिष्यों के लिए यहाँ बता दिया। अब इसमें क्या बताने जा रहे हैं, तीनों ही दंडकों में प्रथमोपशम सम्यक्त्व के अभिमुख सन्मुख जीव की बात है। पहले में संगी पंचेन्द्रिय तिर्यंच और मनुष्य जो सम्यक्त्व प्राप्त करने जा रहे हैं प्रथमोपशम सम्यक्त्व, उनकी बात की। ये द्वितीय महादंडक में देवों की बात की, देव और नार की, सातवें पृथ्वी को छोड़कर बाकी, यानी छठे पृथ्वी तक के नार के। अब यहाँ जो तीसरा महादंडक है, तो इसमें ये बताएंगे कि सातवें नरक का नार की जो है, जो प्रथम ऑप्शन सम्यक्त्व के अभिमुख है। अन्यत्र क्या देखा था हमने, वो तिर्यंच गति वगैरह का तो बंध विच्छेद करके बाद में कौन सी बांधती उसकी बात की, वो मनुष्य गति बांधता है, अन्य देव नार की मनुष्य गति को बांधते है सम्यक्त्व के सन्मुख में अवस्था में, यानी करण लब्धि के अंत में। यह सातवें नरक का नार के तो तिर्यंच गति को ही बांधता रहेगा करण लब्धि के अंत तक, ये वहां की विशेषता है। अब इसको पढ़ेंगे हम। पंचन्नम नानावरणीयानम, नवन्नम दंसनावरणीयानम, सादा वेदनीयम, मिच्छत्तम, सोलसन्नम कसायानम, पुरिस वेद हस्सरदि भेदगुंछा, अवगम च न बंधदी। यहाँ तक तो अन्यत्र जैसे समान था वैसा ही है। तिरिक्ख गति, देखो तिर्यंच गति ये मुख्य बात है यहाँ पर, फिर उसके योग्य जो बाकी प्रकृतियां बंधेगी। तिरिक्ख गति पंचेन्द्रिय जादि ओरालिय तेजा कम्मय शरीर समचौर संठान ओरालिय अंगोवंग वज्जरिस संगठन वर्ण गंधरस फास, तिरिक्ख गति पावगाणु पूवी अगुरु अलहुआ उगाध परगाध उत्साहम उज्जोवम सिया बंधदी सियाण बंधदी। उद्योत प्रकृति बंध भी सकती है नहीं भी बन सकती है, क्योंकि तीरंज गति के साथ ही बंधेगी, परंतु वो बंधेगी ही, ऐसा कोई नियम नहीं। पसत्त विहाय गति तस बादर पज्जत पत्ते शरीर थिर शुभ सुभग सुसर आदेज जस कीर्ति निमिण नीचा गोद, क्योंकि तीरंज गति इसलिए नीच गोत्र बताए, अन्यथा बाकी जीव तो उच्च गोत्र को बांध रहे उस समय। पंचन्न मंत्रायानम एदाव पयड़ियो बंध दी परम सत्त सम्मत्ता अहि मुहो अधो सत्तमाए पुढ़वीये नेरियो। अब इसका हिंदी पढ़ेंगे। प्रथम ऑप्शन सम्यक्तों के अभिमुख ऐसा नीचे सातवीं पृथ्वी का नारकी, नीचे क्योंकि अधो लिखा है, अधो सत्तमाए पुढ़वीये, नीचे की सातवीं पृथ्वी नारकी मिथ्या दृष्टि जीव क्या क्या बांधता है वो अभी बता रहे हैं। पांचों ज्ञानावरणीय, नवो दर्शनावरणीय, सातावेदनीय, मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी आदि सोलह कषाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, इन प्रकृतियों को बांधता है, किंतु आयु कर्म को नहीं बांधता है। अब नाम कर्म के बताएंगे। तिर्यक गति, पंचेंद्रिय जाति, औदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्य संस्थान, औदारिक शरीर अंगोपांग, वज्रषभ नाराज सहनन, वर्ण गंध रस स्पर्श, तिर्यक गति प्रायज्ञानपूर्वी, तिर्यंज गति के साथ उसी की प्रायज्ञानपूर्वी बंधेगी, अगुरु लघु उपघात परघात उच्छ्वास, इन प्रकृतियों को बांधता है। उद्योत प्रकृति को कदाचित बांधता है और कदाचित नहीं बांधता है, यानी ऑप्शनल है, बंधेगी भी नहीं भी बंधेगी। प्रशस्त विहार गति त्रस बादर पर्याप्त प्रत्येक शरीर स्थिर शुभ सुभग, ये कॉमा लगा ना, स्थिर के बाद कॉमा, शुभ सुभग सुस्वर आदेय यशस कीर्ति निर्माण, गोत्र में से नीच गोत्र है, और पांचों अंतराय कर्म इन प्रकृतियों को बांधता है। डिफरेंस कहाँ है? अन्य देव नारकियों में तो देव मनुष्य गति मनुष्य गत्यानुपूर्वी था, उसमें उद्योत का सवाल ही नहीं था और उच्च गोत्र बांध रहा था, यहाँ तो ये यहाँ डिफरेंस है। शंका, तिर्यक गति तिर्यक गत्यानुपूर्वी उद्योत और निज गोत्र, इन प्रकृतियों की यहाँ पर बंध विच्छेद क्यों नहीं होती? यानी हमें तो यही समझाना चाहते हैं कि अन्यत्र से इसका ये डिफरेंस है कि इनकी बंध विच्छेद यहाँ पर नहीं हुई है, तो ये प्रश्नकार के मुंह में रख दिया प्रश्न की क्यों नहीं होती। समाधान, नहीं, क्योंकि भव संबंधी संकलेश के कारण, सातवीं पृथ्वी का ऐसा ही नियम है, वहाँ भव संबंधी ऐसा ही संकलेश, मिथ्या दृष्टि है तो तिरंज गति को ही बांधते हैं। अन्य नारकी जो है अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त में मनुष्य गति तिरंज गति बांध रहे मिथ्या दृष्टि, यहाँ मिथ्या दृष्टि हो या सात साधन हो तो तिरंज गति को ही बांधता है। इसे कहते भव संबंधी संकलेश के कारण शेष गतियों के बंध के प्रति अयोग्य, ऐसे सातवीं पृथ्वी के नारकी मिथ्या दृष्टि के तिर्यक गति तिर्यक गति प्रायज्ञानपूर्वी और नीच गोत्रों को छोड़कर सदाकाल, यानी हमेशा के लिए नियम है, इनकी प्रतिपक्ष स्वरूप अन्य प्रकृतियों का बंध नहीं होता, तथा विशुद्धि के वश से ध्रुवबंधी प्रकृतियों का बंध विच्छेद नहीं होता है, उनके लिए ये ध्रुवबंदी है। हाँ। देखो ध्रुवबंदी किसको कहते हैं, उस गुणस्थान में बंध विच्छेद होने पर ऊपर के गुणस्थानों में तो वो नहीं बंधेगी, तब तक उसको ध्रुवबंदी कहेंगे। जैसे मिथ्या तो प्रकृति ध्रुवबंदी है, पहले गुणस्थान में सबको बंधेगी बंधेगी, तो सातवें नरक के नारकी के लिए तिर्यक गति ये उसकी ध्रुवबंदी है, और अन्य नारकियों के लिए मनुष्य गति तिर्यक गति ये प्रतिपक्ष वाली है, ऐसे वहां नहीं है ये कहना चाहते। देखो, तथा विशुद्धि के वश से ध्रुवबंधी प्रकृतियों का बंध विच्छेद नहीं होता, अन्यथा उसी विशुद्धि के वश से ज्ञानावरण आदि प्रकृतियों के भी बंध विच्छेद का प्रसंग आता, यानी वो ध्रुवबंधी है तो अन्य ध्रुवबंधी का भी विच्छेद हो जाता, किंतु ऐसा है नहीं, क्योंकि वैसा मानने पर अनवस्था दोष आता है। आउम चरणबंधन इस वाक्य में पठित च शब्द के द्वारा सूचित अबध्यमान प्रकृतियां यहाँ जानकर कहना चाहिए, यानी अन्य भी जो नहीं बनती उसको भी जानना चाहिए। इसी को विशेषार्थ में कौन सी नहीं बनती उसको यहाँ बताएंगे। विशेषार्थ च शब्द से सूचित प्रकृतियां इस प्रकार है, यानी कुछ तो यहाँ पर नहीं बन रही है विशुद्धि के कारण, और कुछ ऐसे कि बनती ही नहीं है नारकियों को, ये सब इसकी यहाँ बता दिए। देखो असाता वेदनिया, स्त्री वेद नपुसक वेद, वो स्त्री हुआ स्त्री करना, असाता वेदनीय का बंध कब नहीं है, जब प्रथम उपशम सम्यक के सन्मुख है तब, बाद में समय दर्शन होने के बाद विशुद्धि थोड़ी स्टेडी है तो फिर बंधेगा ना दोनों, क्योंकि चौथे गुणस्थान वाले को तो बनती है, साता असाता दोनों का बंध है, अभी इस मोमेंट पर नहीं बन रहे, करण लब्धि के अंत में वो नहीं बन रही है। स्त्री वेद नपुसक वेद, वैसे मिथ्या दृष्टि है तो तीनों वेदों का बंध अल्टरनेटली होता ही रहता है, परंतु अभी सम्यक के सन्मुख है, जिसे हमने देखा था ना अन्य मनुष्य तीर्यंचों के लिए, 27वें स्थान पर नपुसक वेद की बंधे उच्चित हुई थी, 30वें स्थान पर स्त्री वेद की, हाँ तो इनके भी उसकी बंधे उच्चित होगी। अरतिशोक ये भी हमने 34वें स्थान पर देखा था, नरक गति मनुष्य गति देवगति, वैसे नरक गति और देवगति इनके बनती नहीं है, परंतु यहाँ सभी इकट्ठा बता दिया। मनुष्य गति जो अन्य नारकियों के मनुष्य गति बनती है यहाँ पर, इसको नहीं बन रही, क्योंकि ये बहु संबंधी 7वें नरक के नारकी का ऐसा ही वहाँ का स्वभाव है, उनके बनती नहीं। एकेंद्रीय जाति द्विंद्रीय जाति तीनद्रीय जाति चतुरेंद्रीय जाति, ये तो अन्य नारकियों को भी कभी भी बनती नहीं है। वैक्रीक शरीर आहारक शरीर, ये सवाल ही नहीं यहाँ बनने का। अभी संस्थान में से न्यग्रोध परिमंडल संस्थान, स्वाति संस्थान, कुब्जक संस्थान, वामन संस्थान, हुंडक संस्थान, हमने देखे थे ना, ये एक एक संस्थान की बंध विच्छित्ति होती रहती है। हाँ न्यग्रोध परिमंडल 32वें पर है, ऐसा उल्टा उल्टा चले जाओ। वैक्रीय शरीर अंगोपांग आहारक शरीर अंगोपांग, वज्र नाराच सहनन अर्ध नाराच सहनन कीलित सहनन असंप्राप्ता सुपाटिका सहनन, परंतु अभी वो वज्र वृषभ नाराच सहनन बांध रहा है यहाँ पर तीर इंच के पंचनी तीर इंच के साथ। नरक गति प्रायज्ञान पूर्वी, मनुष्य गति प्रायज्ञान पूर्वी, देव गति प्रायज्ञान पूर्वी। आतप ये तो उसके एकेंद्रिका बंधन है, तो ये बंधने का सवाल नहीं है। अप्रशस्त विहाय गति इस स्थान पर नहीं बन रही है अभी, वैसे बाद में सम्यक तो होने पर भी नहीं बंधेगी। स्थावर सूक्ष्म अपर्याप्त ये इस बनते ही नहीं है, साधारण शरीर भी इसके नहीं बनता है। अस्थिर अशुभ दुर्भग दुस्वर अनादेय अयशस्कीर्ति, जैसे बाद में उसको अस्थिर अशुभ का बंध होगा, पर दुर्भग दुस्वर अनादेय नहीं बंधेगी सम्यक तो होने पर, ख्याल में आते हैं ना। परंतु हमने जो 34वें स्थान पर देखे थे अरति शोक और फिर ये अस्थिर अशुभ वगैरह वगैरह अयशस्कीर्ति, उसके अभी सम्यक तो के सन्मुख अवस्था में नहीं बंधेगी। ये कौन कौन से नहीं बनती उसकी लिस्ट बताई उन्होंने, तीर्थंकर और उच्च गोत्र, इन प्रकृतियों को प्रथमोपशम सम्यक्त्व के अभिमुख हुआ सातवी पृथ्वी का मिथ्या दृष्टि नारकी नहीं बांधता है। इस प्रकार पांचवी चूलिका समाप्त हुई। मैंने बांधता कितना है, वैसे हमने अन्य 72 देखी थी ना देवों की, तो इसमें 72 या 73 उद्योत को लेते हैं तो बांधने वाले। इस प्रकार कितनी और किन प्रकृतियों को बांधता है यह जो सूत्रोक्त पद है उसका व्याख्यान समाप्त हुआ, यानी कौन सी बांधता है उसी से कौन सी नहीं बांधता वो भी हमने यहाँ देख लिया था। आगे बढ़ते अभी छठी चूलिका भी, 145 पृष्ठ, छठी चूलिया, पहला सूत्र। केवड़ी कालट ठिये ही कम्मे ही सम्मत्तम लभदी वा न लभदी वा न लभदित्ति विभाषा। काल की अपेक्षा कितनी स्थिति वाले कर्मों के द्वारा सम्यक्त को प्राप्त करता है अथवा नहीं प्राप्त करता है, यानी कितनी स्थिति के द्वारा प्राप्त करेगा। तो हमने देखा था अंत कोड़ा कोड़ी कर देता है पहले ही, और उस स्थिति से वो तो फिर सम्यक्त प्राप्त करता है। फिर बताएंगे उससे अधिक वाले का नहीं बनते, और जो एक इंद्रिय असंगी पंच इंद्रिय जितनी से हजार सागर और 25 सागर 50 सागर ऐसे स्थिति वाले को भी नहीं होता है। ये दोनों ही बातें बताएंगे इस वाक्य के अंतर्गत। अथवा नहीं प्राप्त करता है इस पद की व्याख्या करते हैं। इस सूत्र का अर्थ कहते हैं, काल की अपेक्षा कितनी स्थिति वाले कर्मों के होते हुए, यानी यह स्थिति सत्व की बात है, बंध की नहीं, इसको हम स्थिति सत्व कहेंगे। यानी सत्ता में कौन से कर्मों की कितनी स्थिति पड़ी है। अब यहाँ आयु से कोई संबंध नहीं है, अन्य 7 कर्मों की बात करेंगे। तो कितनी स्थिति वाले कर्मों के होते हुए जीव सम्यक्त को प्राप्त करता है, और काल की अपेक्षा कितनी स्थिति वाले कर्मों के होते हुए सम्यक्त को नहीं प्राप्त करता है, यह एक प्रश्न है। यहाँ सम्यक्त कहने से सब जगह प्रथम उपशम की बात चल रही है अपनी। इस पृच्छा सूत्र का द्रव्यार्थिक न्याय का अवलंबन लेकर अवस्थान होने से संग्रहित समस्त प्रकृत अर्थ का व्याख्यान किए जाने पर उसमें जो सम्यक्त को नहीं प्राप्त करता है यह पद है, उसकी विभाषा की जाती है। यानी प्रश्न में तो दोनों कितने स्थिति रहने पर करता है कितने स्थिति पर नहीं रहता है, ऐसे दोनों प्रश्न पूछकर उसको इकट्ठा संग्रह किया था। अब उसमें से कितनी स्थिति के होते हुए नहीं प्राप्त करता उसकी बात पहले बताएंगे। उन स्थितियों का प्ररूपण करते हुए आचार्य कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति के वर्णन के लिए उत्तर सूत्र कहते। उनको तो प्रश्न का जवाब देना था, परंतु अभी यहाँ वो प्रसंगवश कौन से कर्मों की कितनी उत्कृष्ट स्थिति होती उसका वर्णन यहाँ कर रहे हैं। कसमें वो स्थान समझ कर एट ए टाइम कितने नंबर ऑफ प्रकृतियां बनती है, वो उसको स्थान कहा था। और यहाँ स्थिति यानी कर्म का बंध कितनी स्थिति वाला होता है, 70 कोड़ा कोड़ी का होता है कि 30 कोड़ा कोड़ी का, अंत कोड़ा कोड़ी का, उसको जिसको स्थिति सत्व कहते हैं। समझ में आते स्थिति यानी वो कितने साल के लिए जीव के साथ बंधा हुआ है, उसकी स्थिति कितनी पड़ी है सत्ता में, कितने निषेक पड़े है उसके, उसको कहेंगे स्थिति। ये बंधे हुए कर्मों की स्थिति, उसको कहेंगे स्थिति सत्व। जो नया बंध होता है उसको कहेंगे स्थिति बंध। ये दो शब्द आएंगे हमेशा। अब ये सम्यक तो होने जा रहा है तो स्थिति सत्व से स्थिति बंध छो कम ही होगा, स्थिति सत्व को उल्लंघन अधिक नहीं होगा, वो मिथ्यात्व में जाने पर हो सकता है, अब नहीं। देखो एत्तो उक्कस्य ठिदिम वर्णयिष्यामो, अब इससे आगे उत्कृष्ट स्थिति का वर्णन करेंगे, क्योंकि हमें मालूम नहीं होगा उत्कृष्ट स्थिति कितनी है, तो कितना भी कहेंगे हमें क्या फायदा उससे, इसलिए पहले बैकग्राउंड तैयार करने के लिए उत्कृष्ट स्थिति जो अलग अलग कर्मों की जुदी जुदी है वो बताएंगे। शंकाकार पूछ लेते यहाँ पर कर्मों की स्थिति का निरूपण किस लिए किया जा रहा है, ये तो विषय छोड़कर कहाँ भाग रहे हो उत्तर देने के बदले, ये कह रहे हैं समाधान नहीं, क्योंकि समस्त स्थिति विशेषों का, स्थिति विशेष ने जुदी जुदी स्थितियां जो जिसकी होती है अपनी अपनी, संग्रह करने वाली कर्म स्थिति के ज्ञात नहीं होने पर यह स्थिति सम्यक्त को ग्रहण करने के योग्य है और यह स्थिति सम्यक्त को ग्रहण करने के योग्य नहीं है, इस प्रकार की प्ररूपणा करने का और कोई उपाय न होने से, यानी उत्कृष्ट स्थिति ही मालूम नहीं हो तो हम नहीं कह सकते कि इतनी स्थिति होने पर इसका सम्यक्त हो सकता या नहीं हो सकता, इसलिए उत्कृष्ट स्थिति कितनी है वो बतानी पड़ेगी। अथवा कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति को बांधने वाला जीव, यहाँ बांधने की बात की, वहां स्थिति यानी वो तो सत्व की बात की, अब बांधने वाले की बात कर रहे हैं, यानी स्थिति बंध की बात कर रहे हैं। उत्कृष्ट स्थिति कब बनती है, ज्यादा संकलेश हो तो तो ऐसा भी जीव सम्यक्तो को ग्रहण नहीं करेगा, प्रथम उपशम की बात है। अथवा कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति को बांधने वाला जीव प्रथमोपशम सम्यक्त को नहीं प्राप्त करता है, इस बात का ज्ञान कराने के लिए कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति का निरूपण किया जा रहा है। अब पूछते स्थिति किसे कहते हैं, यानी अभी अब बेसिक से, क्योंकि चूल्हे का है ना मुख्य जहां होते हैं प्रश्न, तो डायरेक्ट उसके जवाब दिए जाते हैं। यहाँ तो आचार्य उस विषय को और गहराई से समझाना चाहते हैं, इसलिए यहाँ स्थिति कहना किसको, ये प्रश्न उठाए उन्होंने स्वयं। समाधान, योग के वश से कर्म स्वरूप से परिणत पुद्गल स्कंधों का योग के कारण क्या होता है, कर्माण वर्गणा है, वो कर्म रूप परिणमित होती है। हम इसको कहेंगे ग्रहण हो गया, उसका ग्रहण हुआ है, कहीं बाहर से नहीं आते, जितने जीव के प्रदेश है वहीं पर जो कर्माण वर्गणा ठसोठस भरी है उसमें से कुछ जिस समय वो कर्मरूप होने की योग्यता उसमें पड़ी है पुद्गल में, वो स्वयं ही कर्मरूप परिणमित हो जाती है, तो हम कहेंगे जीव ने अपने योग के कारण उनको ग्रहण किया, ये कहने की पद्धति है। तो कहते योग के वश से, हमने देखा था कर्म का बंध होता है तो चार बातें बनती है, याद है कि भूल गए, चार नाम है बंध के, हाँ हाँ, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। तो प्रकृति बंध और प्रदेश बंध योग के कारण होता है, यानी कितने नंबर ऑफ परमाणु जीव ने ग्रहण किया ऐसा हम कहेंगे उसको, यानी कर्माण वर्गणा में कितने अनंत परमाणु होते हैं, और ऐसी कर्माण वर्गणा भी अनंत जीव एक समय में ग्रहण करता है उसको कहेंगे समय प्रबद्ध, और उसी का नाम है प्रदेश बंध। और वो जो परमाणु ग्रहण किए उसके 8 या 7 कर्मों में विभाजन हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, उसको कहेंगे प्रकृति बंध, और उसका कारण है योग। क्या कहा फिर देखते, योग के वश से कर्म स्वरूप से परिणत पुद्गल स्कंधों का, ये पुद्गल स्कंध ने कर्माण वर्गणा है, कषाय के वश से, उसी समय योग भी है और एक कषाय भी है, तो कषाय के कारण उसमें क्या होता है, कषाय के वश से जीव में एक स्वरूप से रहने के काल को स्थिति कहते हैं, यानी जो कर्मरूप परिणत हुए हैं वो उसी कर्मरूप से जीव के सत्ता में जीव के साथ कितने काल तक रहेंगे तो उसको कहेंगे उतनी स्थिति बांधी उसने, इसको स्थिति बंध कहेंगे। जैसे ज्ञानावरण रूप से बंधे, अब वो जीव के साथ सत्ता में ज्ञानावरण रूप से पड़े रहे, हम कहें ये जीव ने कर्म ये बांधा है, जीव का ये कर्म ऐसा जो कथन पद्धति है, तो उसको कहेंगे इतनी स्थिति तक वो पड़ा है। एक समय में जो ग्रहण होता है, जो एक समय में जो पूरा लॉर्ड बंधा है वो पूरा का पूरा एक समय में खिरता नहीं है, उसकी निषेक रचना होती है, यानी आबाधा काल है उसमें कोई निषेक नहीं है, उसके बाद प्रति समय एक एक निषेक इस तरह से रचना हम बताते होती है ना, अंदर कोई लाइन से कर्म नहीं खड़े रहते, परंतु हम उसको ग्राफ में सब उसका चित्र बनाते हैं समझने के लिए, एक निषेक, दूसरा निषेक, तीसरा निषेक, एक एक निषेक में अनंत अनंत परमाणु, और फिर वो अंतिम निषेक कितने काल ऊपर पड़ा है, हम कहेंगे मिथ्यात्व का निषेक कहाँ है, तो मैक्सिमम उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर, 7,000 वर्ष की आबादा है, उसके एक समय अधिक, दो समय अधिक, तीन समय अधिक, हर एक समय में एक एक निषेक बनता है, इतने अनंत अनंत ग्रहण किए, तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर के जितने समय है उसमें से 7,000 वर्ष माइनस करो आबादा काल के, उतने निषेक बनेंगे, और उसको कहेंगे जितने निषेक बने उसको कहेंगे वो उसका उदय काल, और उसके नीचे हम दिखाएंगे आबाधा काल, आबाधा काल प्लस उदय काल सब मिलकर जो अंतिम जो निषेक की स्थिति है उसको हम कहेंगे इतना स्थिति बंध हुआ। ख्याल में इतनी बात अभी यहाँ पढ़ेंगे, देखो फिर से वाक्य पढ़ते, योग के वश से कर्म स्वरूप से परिणत पुद्गल स्कंधों का कषाय के वश से जीव में एक स्वरूप से रहने के काल को स्थिति कहते हैं। फिर शंकाकार पूछते हैं, उस कर्म की उत्कृष्ट स्थिति ही पहले किस लिए कहते हैं, उसका समाधान, नहीं, क्योंकि समस्त स्थिति विशेषों की संग्रह करने वाली उत्कृष्ट स्थिति के प्ररूपण किए जाने पर सर्व स्थितियों के निरूपण की सिद्धि होती है। क्या कहना चाहते हैं, जो हमने उत्कृष्ट कितना बन सकता है, तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर, तो उसमें तो जघन्य से 70 कोड़ा कोड़ी सागर कहने से उसमें जगन्य मध्यम उत्कृष्ट सभी स्थितियां इंक्लूड हो गई, मैक्सिमम इतना बनता है, मिनिमम कितना बनता है उसकी बात करेंगे वो, तो उसमें सारी स्थितियां इंक्लूड हो गई क्योंकि प्रति निषेक में एक एक समय का एक एक निषेक पड़ा है। ख्याल में आती है न, कोई जो एक इंद्रिय सागर जितनी बांधता है मान लेते हैं, तो वो सागर वो 70 कोड़ा कोड़ी सागर में आ गई कि नहीं आ गई, इंद्रिय 25 सागर बांधेगा उसमें इंक्लूड हो गए सारे, ये कहना चाहते हैं। उत्कृष्ट स्थिति बताने से बाकी सब स्थितियां, स्थिति विशेष ने अन्य अन्य स्थिति के जो भेद है वो उसमें गर्भित हो गए, ये उसका अर्थ है। अब तीसरा सूत्र, तीन नंबर, तम जहां, वह उत्कृष्ट स्थिति किस प्रकार है, उसका उत्तर बता रहे चौथे सूत्र में। पंचन्नम नानावर्णियाणम नवन्नम दंसनावर्णियाणम असादा वेदनीयम पंचन्नम अंतरायणम उक्कसो ठिदिबंधो तीसरम सागरोभम कोड़ा कोड़ियो। अभी जो ज्ञानावरण दर्शनावरण असातावेदनीय और पांच अंतराय, इनकी उत्कृष्ट स्थिति कितनी बन सकती है, तो 30 कोड़ा कोड़ी सागर। देखो साता को नहीं लिया, केवल वेदनीय को कहना है तो हम कहेंगे 30 कोड़ा कोड़ी, उन साता असाता का डिफरेंट कहना है तो असाता के लिए 30 कोड़ा कोड़ी और साता के लिए 15। हाँ देखो, इन सूत्रोक्त कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति ने हिंदी नहीं पढ़ा, पांचों ज्ञानावरणीय नवो दर्शनावरणीय असाता वेदनीय और पांचों अंतराय, इन कर्मों का उत्कृष्ट स्थिति बंध, बंध की बात है ना, 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम है। इन सूत्रोक्त कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम प्रमाण होती है। शंका, इस स्थिति बंध में एक समय में बंधे हुए क्या सभी पुद्गल परमाणुओं की स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम होती है अथवा सबकी नहीं होती है? प्रश्न क्या पूछा कि सारे के सारे एक ही निषेक बनकर 30 कोड़ा कोड़ी सागर ऊपर पड़े रहते हैं, क्या है? हमने आपको बताया था ना, आबादा छोड़कर इतनी सारी निषेक रचना, हर परमाणु में इतनी स्थिति नहीं है। अभी शंकाकार ने दो उसके लिए ऑप्शन बताए, या सबकी स्थिति समान है या सबकी नहीं होती है। कहते प्रथम पक्ष के मानने पर, यानी वो सबकी समान है ऐसा अगर मानेंगे, तो आगे कहे जाने वाले आबादा और निषेक संबंधी सूत्रों के अभाव का प्रसंग आता है। सबकी एक जैसी स्थिति मानेंगे तो ना उसमें आबादा का सवाल आता है ना निषेक रचना का, क्योंकि समान स्थिति वाले कर्म स्कंधों में आबादा निषेक और विशेष अर्थात हानि वृद्धि को सूचित करने वाले चय के अस्तित्व मानने में विरोध आता है। ये क्या कहना चाहते हैं, हानि वृद्धि का चय क्या होता है? तो जब हम निषेक रचना आगे बताएंगे वो, तो जो निषेक रचना होती है, पहले तो आबादा में कोई निषेक नहीं है, मान लेते ये वर्तमान समय में बंद हुआ, तो वर्तमान समय से लेकर इतना जो काल है जहाँ कोई निषेक नहीं बना है अभी, उसके बाद ये पहला निषेक, फिर दूसरा निषेक, फिर तीसरा निषेक, तो जैसे ट्रायंगल होता है वैसे ऊपर के निषेक हम ऐसे छोटे छोटे दिखाते हैं, इसको कहेंगे तो इस तरह से होता है, यानी इसमें प्रति निषेक परमाणु की संख्या घटती है, नीचे का निषेक सबसे बड़ा, ऊपर थोड़ा कम थोड़ा कम थोड़ा कम, ये जो थोड़ा कम लिखा है वो फिक्स डिफरेंस है, उसी को कहते हैं चय। मान लेते हैं 6300 परमाणु बांधे, पहले उसमें 512 परमाणु है, तो दूसरे में थोड़े कम, तीसरे में थोड़े कम, इस तरह से 32-32 घटाते हुए हम बताएंगे उसको, इसको कहेंगे चय। फिर वो आधे होते हैं, फिर उससे आधे होते हैं, फिर उससे आधे होते हैं, इस तरह से आगे चलता है। तो कहते हैं कि ये सब बनेगा ही नहीं, एक ही निषेक में आपने सब बता दिए, तो घटते हुए का चय का वगैरह सवाल कहाँ आता है? ये स्वयं शंकाकार प्रश्न उपस्थित कर रहा है, इन्हें स्वयं प्रश्न दो उठाए उन्होंने। हाँ, यहाँ क्या कह रहे देखते जरा, पेज नंबर 147 पर, द्वितीय पक्ष के मानने पर मैंने पहला तो रूल आउट कर दिया, दूसरा पक्ष क्या था, सबकी स्थिति समान नहीं है, तो उसका पक्ष वो मानने पर ज्ञानावरणादि कर्मों की सूत्रोक्त 30 कोड़ाकोड़ी सागरों प्रमाण स्थिति घटित नहीं होती। आपने तो बताया 30 कोड़ाकोड़ी सागर और सबकी समान स्थिति नहीं है आप कह रहे हैं, तो ये कैसे होगा? अभी ये 30 कोड़ाकोड़ी सागर इतनी बंदी, 30 कोड़ाकोड़ी सागर बंदी, तो प्रश्नकार क्या पूछ रहा है? आप 30 कोड़ाकोड़ी सागर कहते और सभी परमाणु में जुदी जुदी स्थिति बनी, किसी में 7000, अभी 30 कोड़ाकोड़ी के लिए 3000 एक समय, 3000 दो समय, 3000 साल दो तीन समय, इस तरह से करते करते ऊपर तक स्थिति बन गई, तो सभी परमाणुओं में समान तो नहीं बन गई, दोनों ओर से वो बता रहे प्रश्न पूछ रहे। एक निषेक नहीं बनता है क्योंकि वो आबाधा निषेक चय वगैरह कुछ घटित नहीं होगा। अब कहते कि आप तो कह रहे हो उनकी 30 कोड़ाकोड़ी सागर स्थिति बंदी, तो ये कैसे संभव है, ये उनका प्रश्न है। प्रश्नकार ने दो ऑप्शन दिए उत्तर के लिए और स्वयं उसको रूल आउट कर रहा है। देखो देखो, द्वितीय पक्ष के मानने पर, दूसरा पक्ष क्या था, सबकी स्थिति समान नहीं होती, अगर ऐसा मानेंगे तो ज्ञानावरणादि कर्मों की सूत्रोक्त, सूत्र में तो अभी बताया 30 कोड़ाकोड़ी सागरोपम स्थिति घटित नहीं होती, क्योंकि वहां तो बताया है उत्कृष्ट स्थिति इतनी होती है, क्योंकि उत्कृष्ट स्थिति से एक समय कम आदि स्थितियां भी उन कर्मों में पाई जाती है, ऐसे तो पाई जाती है क्योंकि ये तो सूत्रों में ही बताया है। उसका समाधान यहाँ पर उक्त आशंका का परिहार कहते हैं वह इस प्रकार है। यहाँ पर न तो एक समय में बंधे हुए पुद्गल परमाणुओं के पृथक पृथक ज्ञानावरण कर्म की विवक्षा है, क्योंकि वैसा मानने पर ज्ञानावरण कर्म के अनंतता का प्रसंग आता है, यानी ज्ञानावरण कर्म जो अनंत परमाणु बांधे वो उतने ज्ञानावरण कर्म अलग अलग नहीं है, कर्म तो वो जो पांच है और उसकी जो एक एक प्रकृति एक एक ही है, कर्म अलग प्रकार का नहीं है, अनंत प्रकार के ज्ञानावरण नहीं बंधे हैं, ये कहना चाहते हैं। यानी कुछ ज्ञानावरण की 30 कोड़ाकोड़ी, कुछ ज्ञानावरण की एक समय कम, कुछ ज्ञानावरण की 200, ऐसा तो है ही नहीं है। न यहाँ पर एक एक निषेक के प्रति ज्ञानावरण ऐसा व्यपदेश दिया गया है, यानी एक एक निषेक को जुदा जुदा ज्ञानावरण ऐसा भी नहीं कहा है, क्योंकि वैसा मानने पर ज्ञानावरण कर्म के असंख्ययता का प्रसंग आता है। क्या कहा, एक एक परमाणु को ज्ञानावरण जुदा जुदा मानेंगे तो परमाणु अनंत बंधे, तो ज्ञानावरण अनंत हो जाएंगे। अगर एक निषेक को एक ज्ञानावरण कहेंगे तो जो कोड़ाकोड़ी सागरों में जो होते हैं तो असंख्यात संख्या है, तो निषेक असंख्यात बनेंगे तो ज्ञानावरण असंख्य बनेंगे, ये कहना था। इसलिए मति श्रुता अवधि मन पर्यवर केवल ज्ञान के आवरण सामान्य के, मतिश्रुता अवधि मन प्रयोग केवल ज्ञानावरणता मानी गई है, केवल पांच ही आवरण कर्म लिए यहाँ पर, अर्थात यहाँ मतिश्रुता आदि ज्ञानावरणों के भेद प्रभेदों की विवक्षा नहीं की गई है, किंतु मतिश्रुता आदि पांच भेदों की सामान्य से ही विवक्षा की गई है। यदि ऐसा न माना जाए तो ज्ञानावरण की प्रकृतियों के पांच इस संख्या का विरोध आता है, यानी उस हमने तो पांच ही ज्ञानावरण अभी यहाँ देखे है और उसी की चर्चा है। हाँ, उसका विभाजन कैसे होता है वो बताएंगे ना बात। हाँ, किस में ज्यादा जाता है किस में, क्योंकि ये सर्वघाती केवल ज्ञानावरण, तो पांच में अनंतवा भाग तो उसमें जाता है, अनंतवा भाग, बाकी जो बचा है वो फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन गए, क्योंकि अनंतवे भाग में से सभी के ज्ञानावरण केवल ज्ञानावरण तो पूरा सर्वघाती है, मतिश्रुता अवधि मनोपर्य ज्ञानावरण जो है वो देशघाती प्रकृति है, परंतु उसमें स्पर्धक सर्वघाती और देशघाती दोनों होते हैं, तो जो अनंत वे भाग में से पांचों को डिस्ट्रीब्यूशन होगा और जो अनंत बहुभाग है वो चार में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो तो डिस्ट्रीब्यूशन का सारा अलग जुदा है। हाँ, ऑटोमेटिक उसमें उसका उसके जो कुछ रूल नियम होते हैं किसमें कैसे जाएंगे, फिर उसमें बहुभाग एक भाग बहुभाग एक भाग इस तरह से चला जाएगा, इसलिए जिस ऑर्डर से हम नाम लेते कर्मों के उस हिसाब से उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अभी यहाँ इसका विषय है कि नहीं हम अभी याद नहीं है, ये कर्मकांड में तो लिया है वो सारा, विभाजन कैसे होता है डिस्ट्रीब्यूशन, एक समय में अभी पांच प्रकृतियां बंधी तो उसमें किस प्रकार से विभाजन होता है, उसके सारे नियम है। हमेशा ही एक साथ बनती है,
अभी भी हम लोग का सपोज तो ग्रहणावरण दर्शनावरण चालू हुई है।
सब है, सात कर्म तो निरंतर बनते ही है, आयु कभी कभी बनती है, संक्लेश हो या विशुद्ध हो। ज्ञानावरण दर्शन तो हमने देखा कितनी बनती, वो छोड़ दो कितनी बनती है, वो तो दसवें गुण स्थान तक बंधेगी कि नहीं बंधेगी, नब्बे तक तो मोहिनी की भी बन रही है, आयु तो सातवें तक बन रही है, परंतु आयु का एक कभी कभी बनती है, उसकी बात छोड़ दो, बाकी सात कर्म तो निरंतर बन रहे हैं। यही कहते ना, सात में से तो ज्ञानावरण दर्शन और मोहिनी अंतराय सारे पाप कर्म रूप है, यानी कुछ भी कितना भी पुण्य करो, उपवास करो, चाहे स्वाध्याय करो, चाहे कुछ करो, तो उसका बंध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो सारे पाप रूप है, और उसका फल जीव के डायरेक्ट जीव के भावों के साथ उसका निमित्तपना बनेगा फ्यूचर में भी भविष्य में भी। यानी उसके ज्ञानावरण का निमित्त किससे बनता है, जीव के ज्ञान के साथ, दर्शनावरण का दर्शन के साथ, मोनिय का श्रद्धा चारित्र के साथ, और अंतराय का जीव के जो गुण है पुरुषार्थ आदि उसके साथ। अब जो असाता में असाता नहीं अघाती में हमें क्या होगा, अभी स्वाध्याय कर रहे हो तो घाती कर्म तो पाप ही रूप ही बन रहा है, अघाती में क्या हो रहा है, पुण्य पाप के भेद है, जैसे हम यहाँ विशुद्धि में देखे असाता के बदले साता बंधेगा, नाम कर्म में शुभ नाम कर्म बंधेगा मान लेते हैं, उच्च गोत्र बंधेगा, तो ये तो सारे पुद्गल में उसका फल मिलना है, आपको क्या मिला, शरीर की सुंदरता मिली, जीव को क्या मिला, संयोगों में जो कुछ अनुकूलता मिली जीव को क्या मिला उसमें, उल्टा तो उसी में रचा बचा मैं इस रूप हूं मान लेगा, उसका मिथ्या तो और बढ़ेगा, तो जीव को क्या फायदा मिला पुण्य करके, ये कहना चाहते हैं।
ख्याल में डायरेक्ट जीव के
उसका डायरेक्ट, क्योंकि वो घाती है ना, जीव के गुणों में घात करने घाते हैं उसके। अब ये तो निमित्त रूप से कहते हैं, है तो सारे जीव के अपने भाव अपने से होते हैं, हम कर्मों की तरफ से कथन कर रहे हैं, पर जीव को उसमें बहुत पुण्य की रुचि है ना, तो पुण्य की रुचि वाले को कहते हैं ये तो बंध ही रहे आपको क्या फायदा हुआ, तो कहते ये सर हमने शुभ कर्म भी बांधे ना अघाती में, तो अघाती के शुभ कर्मों का फल तो मुख्यतः तो पुद्गल में चला जाएगा। आप व्यापार धंधा करते पैसा कमाते हैं और पड़ोसी के खाते में पैसा जमा करते हैं क्या, आप कहेंगे हम बुद्धू थोड़े ही है, यहाँ पर ऐसा ही चलता है। पुण्य से मोक्ष मिलता है ना, पुण्य से बंध होता है। ऐसा जरूरी नहीं है, पुण्य को छोड़े बिना नहीं जा सकते, ये कहना क्या है, ये तो इतना अंदर घुस के बैठा है। हाँ अभी ये समझाने से नहीं समझते, किसी को बताएंगे ना तो उनको तो गुस्सा आएगा, उनको लगता है ये स्वच्छंद की बात कर रहे हैं। पुण्य होता है बात अलग, करना ही पड़ेगा ये मान्यता जुदी है, ये मान्यता खोटी है, मान्यता की बात है, पुण्य नहीं छोड़ना है, पुण्य तो रहेगा। अभी मुनियों के कितना पुण्य बन रहा है, मुनियों ने इतनी शास्त्र रचना की है तो उन्हें तो जब तक आत्मा में स्थिरता होती थी तो उसका आनंद लेते थे, अब जिसमें उपयोग अपने में नहीं स्थिर पाता तो ऐसी रचना करके गए, तो उनके तो इसी में तो उपयोग होगा ना, अन्य किसी बातें में रुचि ही नहीं उनके, तो क्या करेंगे, पुण्य तो होगा ही, परंतु पुण्य करने जैसा यह मान्यता जब तक रहेगी तब तक सम्यक तो भी नहीं होगा। ये लोगों को यही प्रश्न है, तब तक क्या करना, पुण्य करना चाहिए ना, ये ऐसा या उसके बिना कुछ नहीं होगा, ये मान्यता इतनी घर अंदर तक ऐसे घुस गई है ना, तब तक क्या करना, तब तक क्या करना, ये ऐसा नहीं लगता तब तक वही करना है, रस्से में गिर जाते तो क्या करते हो, वो केले के छाल के ऊपर फिसल गए गिर गए क्या करते, उठते जब तक उठे नहीं तब तक क्या करना, कौन देखता है, ऐसे देखते रहे ना, तब तक उठने का प्रयत्न करना, ये और यहाँ क्या तब तक क्या करना, यानी वो कोई हाई लेवल की बात है और अभी हम पुण्य करेंगे, यही मान्यता सब सर्वत्र पाई जाती, यानी जो सुनने आते उनका भी प्रश्न यही होता है तब तक क्या करें। देखो तब तक तो मान्यता में लेना है ना, होगा तभी होगा वो तो बात हमको भी मालूम है, पर मान्यता तब भी कर सकते हैं ना कि जब तक प्राप्त नहीं हुआ है समय तो तब तक क्या करना, मान्यता सही करना, पुण्य करने नहीं करने छोड़ने उसकी बात ही नहीं है। ये है इतना सरल, पर तो इतना ऐसा वो तो अंदर मान्यता घुस गई है वो निकलने के लिए, इसलिए कठिन लगता है नहीं कठिन। उस मान्यता सुधारने के लिए ना पुण्य छोड़ना है आपको, क्योंकि वो जो आने वाला परिणाम तो आकर ही रहेगा, कुछ करने धरने की बात ही नहीं है। तो हम कुछ नहीं करने वाले ज्ञायक द्रव्य है, इसका ही स्वीकार करना है। और मान्यता सुधारनी है, ज्ञान होने पर सुधर जाती है। देखो सरल परिणाम है उस परिणाम ही है वो स्वीकार करता है, और ये टेढ़ा परिणाम है उसके साथ जिसको वाद करते बैठेगा, कुछ न कुछ करेगा, क्योंकि अपनी मान्यता जो खोटी पकड़ी हुई है उसको वो सही सिद्ध करना है उसको, तो क्या करेगा, वाद विवाद करते रहेगा वो। वो कहते हैं ना ज्ञानी कहे सहज का धंधा, और वाद विवाद करे सो अंधा। अभी क्या करे उसमें, विवाद करने से भी कुछ नहीं, अपने को तो सरल मार्ग है वो सरल उसको अपनाना है। कितनी बात आती है ना, मनुष्य वो कितना दुर्लभ है, उसकी बातें कितनी। शाम को लोग आप आते नहीं है, बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ ये कहाँ होता है, कहे थे समाधान पढ़ रहे थे यहाँ पर। ये तो हमने वो पांच ज्ञानावरण वो देखे, पांच संख्या के विरोध आता है नीचे से छठवी लाइन, पेज नंबर 147 ना। तथा ऐसा मानने पर भी प्रथम पक्ष में कहा गया दोष नहीं आता है, क्योंकि वैसा माना नहीं गया है। प्रथम पक्ष क्या था उनके, के सभी प्रमाणों की एक ही स्थिति होती है, ये प्रथम पक्ष था, तो ऐसा तो कहा ही नहीं है, माना भी नहीं है। अर्थात एक समय में बंधे हुए पांचों ज्ञानावरणीय कर्मों के समस्त पुद्गल परमाणुओं की स्थिति 30 कोड़ाकोड़ी सागरपम प्रमाण ही स्वीकार नहीं की गई, ही नहीं लगाया उसके लिए, सभी परमाणुओं के लिए वो नहीं कहा गया। इसी प्रकार द्वितीय पक्ष में कहा गया दोष नहीं आता, वहां कहते 30 कोड़ाकोड़ी सागर कह दी तो हर एक परमाणु जुदी जुदी कैसे हो सकती है, क्योंकि द्रव्यार्थिक नय का अवलंबन करने पर उस उत्कृष्ट स्थिति से अपृथक भूत एक समय कम दो समय कम आदि स्थितियों के पृथक निर्देश की आवश्यकता नहीं रहती। यानी हमने आपको बताया आपके पास 1000 रुपए है, तो 1000 रुपए है तो आपके पास 999 भी है, 998 भी है, वो सब वैल्यू उसमें आ गई ना, 1000 कहने से 1 से लेकर 1000 तक की सभी वैल्यू उसमें गर्भित हो गई। ऐसे जब हमने कह दिया यहाँ पर 30 कोड़ा कोड़ी, एक समय कम दो समय कम तीन समय कम सब स्थितियां उसमें आ गई, ये कहना चाहते हैं। इन्हें उसको अलग अलग जुदी जुदी कहने के निर्देशन ही कथन उसके कहने की आवश्यकता नहीं रही। अब इसको कहते द्रव्यार्थिक नय से ऐसा ही कहेंगे, जो मैक्सिमम जो है उसको कहेंगे इतनी स्थिति बांधी, एक 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 नीचे बांधी, उसके अलग अलग कथन नहीं करेंगे। अब द्रव्यार्थिक नय की देशना से व्याकुलित चित्त वाले द्रव्यार्थिक ने ऐसे कथन किया तो इनको तो कुछ न कुछ प्रश्न उठने लगे हैं, तो व्याकुल हो गए ऐसे शिष्यों के लिए। पर्यायार्थिक नई शिष्य की बुद्धि व्याकुलता को दूर करने के लिए, यानी जो पर्यार्थिक नए से जो जानना चाहते हैं इसलिए वो व्याकुल है, क्योंकि जानने की भी आकुलता है वहां पर, तो उस व्याकुलता को दूर करने के लिए आचार्य पर्यायार्थिक नय की देशना करते हैं, उसका उपदेश बता रहे हैं। तिन्नी वास सहस्राणी आबाधा, यानी अभी उसमें आबाधा बताएंगे, फिर निषेध बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। पूर्व सूत्रोक्त ज्ञानावरणी आदि, ये आदि में किस किस को लिया था मनीषा बेन, याद है आपको, ज्ञानावरणी आदि, हाँ असाताविन्य, मोहनीय को नहीं लिया था, अंतराय को लिया था, ज्ञानावरण दर्शनावरण असाताविन्य और अंतराय, पांचों अंतराय, पांचों ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, ऐसा हमने लिया था। तो उनकी आबाधा कितनी बताई, 3000 वर्ष आबाधा, 3000 वर्ष उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी सागर, देखो 30 कोड़ा कोड़ी और 30 सौ है ना, 3000 ऐसा ही कहेंगे, 300 समझ, 3000। अभी 70 कोड़ा कोड़ी होगी तो 7000 यानी 7000 वर्ष, इस तरह से उसका प्रोपोर्शन है। देखो इसका अर्थ देखते हैं, बाधा के अभाव को अबाधा कहते हैं, अबाधा नहीं अबाधा, और अबाधा ही आबाधा कहलाती है, अबाधा से ही आबाधा शब्द हुआ, बाधा का अभाव। जिस समय प्रबद्ध में 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम स्थिति वाले पुद्गल परमाणु होते हैं, अभी सबको 30 कोड़ा कोड़ी नहीं कहा, उस समय प्रबद्ध में 30 कोड़ा कोड़ी वाले कुछ परमाणु है, उस समय प्रबद्ध में एक समय प्रमाण काल स्थिति वाले पुद्गल परमाणु रहना संभव नहीं है। यानी जो समय प्रबद्ध बंधा है उसमें किसी की स्थिति, किसी निषेक की स्थिति एक समय वाली होगी तो कहते नहीं, दो समय नहीं, तीन समय नहीं, 3000 वर्ष नहीं, 3000 वर्ष और एक इतनी स्थिति वाले उसमें परमाणु हो गई, उसको कहेंगे आबाधा। देखो हमने क्या देखा है, यहाँ बंद हुआ तो यहाँ कोई एक समय वाले परमाणु है नहीं है, दो समय वाले कोई परमाणु है नहीं है, तीन समय वाले कोई है नहीं है, परमाणु कहाँ से शुरू हुए, ये 3000 वर्ष और एक समय पर परमाणु पड़े हैं, ये कहना चाहते हैं, उसको आबाधा कहते हैं। फिर से पढ़ते हैं इसको, जिस समय प्रबद्ध में 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम स्थिति वाले पुद्गल परमाणु होते हैं, वो पूरा समय प्रबद्ध 30 कोड़ा कोड़ी वाले उसमें है तो स्थिति उतनी कहलाई। अब ऐसे समय प्रबद्ध में एक समय स्थिति वाला कोई परमाणु नहीं होगा, ये कह रहे, उस समय प्रबद्ध में एक समय प्रमाण काल स्थिति वाले पुद्गल परमाणु रहना संभव नहीं है, क्योंकि वैसा मानने में विरोध आता है। इसी प्रकार उस उत्कृष्ट स्थिति वाले समय प्रबद्ध में दो समय, तीन समय आदि को लेकर 3000 वर्ष प्रमित यानी उतने वाले काल स्थिति वाले भी पुद्गल परमाणु नहीं है, यानी एक समय वाले नहीं, दो समय वाले नहीं, 1000 वर्ष वाले नहीं, 2000 वर्ष वाले नहीं, 3000 वर्ष वाले भी नहीं है, 3000 वर्ष और एक समय वहां वो शुरुआत होगी उनकी, ये उसका कहना है। क्योंकि ऐसा स्वभाव ही है और स्वभाव अन्य के प्रश्न योग्य नहीं हुआ करते, ऐसा न्याय है। ये कितने बार बताया उन्होंने, हाँ स्वभाव अन्य के प्रश्न के उत्तर देने के लिए कोई बाध्य नहीं होते, ऐसा ही स्वभाव है। पहले पुरुषों की इच्छा से वस्तु का परिणाम नहीं पाया जाता, ऐसा था वहां पर, वहां 109 था, और यहाँ कहते हैं स्वभाव अन्य के प्रश्न योग्य नहीं हुआ करते। वन जीरो नाइन पर यह वाक्य आया था, पुरुषों की इच्छा से वस्तु का परिणमन नहीं पाया जाता, यानी कुछ ऐसे वाक्य आते हैं ना उसके लिए लिख के रखे हैं पीछे, उसमें विषय अलग था, यहाँ वो पूछा था ना किसी को, वो तो पतंग का जो गुनगुनाना है या जो उसका उस स्वर उस किसी को मीठा लगेगा, हो सकता है कौवे का भी किसी को अच्छा लगेगा, भिन्न रुचि वाले हैं तो आप उसको सुस्वर या दुस्वर क्यों कहते हैं, वहां बताया था पुरुषों की इच्छा से वस्तु का परिणाम नहीं होता, यानी किसी को वो नीम कड़वा है उसका रस तो कड़वा ही कहेंगे ना, वो किसी को अच्छा लगता है इसलिए उसको कड़वे रस को हम मीठा रस नहीं कह सकते, ये कहना चाहते, जिसका जो नाम है वो तो वही रहेगा, वो अच्छा बुरा लगना वो तो पुरुष की इच्छा, वो पुरुष है नहीं कोई जीव की इच्छा, वैसे उसकी बात यहाँ नहीं कर रहे। यहाँ दूसरा वाक्य है कौन सा, जो वस्तु का जैसा स्वभाव है, जिस प्रकृति का या कर्मों में जो कोई बातें बनती है वो उनका ऐसा ही स्वभाव है और स्वभाव अन्य के प्रश्न योग्य नहीं हुआ करते। ऐसे बहुत सारे ना, ऐसा क्यों वाय वाय करते हैं। अब भाई के लिए जो कुछ जहाँ परीक्षा करने योग्य है वहां जरूर पूछना चाहिए, परंतु जहाँ ये ऐसी बातें उसमें वाय का क्या हुआ, ऐसा ही वस्तु स्वभाव है बस। ये मेरु पर्वत इतने हाइट वाला क्यों है, उसकी इतनी नींव क्यों है, जो है वो बता रहे हैं ना। अब आगे बढ़ते हैं। पूर्व सूत्रोक्त कर्मों की यह उत्कृष्ट आबादा है, यह है ना कितनी 3000 वर्ष, एक समय प्रबद्ध अपने एक समय प्रबद्ध समझ में आया, एक समय में बंधे हुए परमाणु, उसको एक समय प्रबद्ध कहते हैं और उसमें यह आबाधा और ऐसी निषेक रचना होती है, इसको ये पूरे को एक समय प्रबद्ध कहेंगे। ये अभी बंधा हुआ है, उस समय सत्ता में ऑलरेडी पड़े हैं बहुत सारे निषेक, उसकी बात यहाँ नहीं हो रही है, क्योंकि सत्ता में कर्म भी है, उसका बंध भी हो रहा है, उदय भी हो रहा है। देखो ये हमने अभी बंधने वाले की बात की, अभी सत्ता में, अभी ये लंबे सत्ता में बहुत बड़े बड़े पड़े हैं, तो सत्ता में भी पड़े हैं कि नहीं इतने, तो सत्ता में ऑलरेडी पड़े और ये अभी बंधने वाले की बात है, उसका उदय में उसमें जाएंगे ना, नेक्स्ट समय में उसी के कहलाएंगे। अभी तो इसकी हमें बात करनी, इसलिए इसको जुदा बताया। अभी ये जिस स्थिति में, उस स्थिति में ये मिल जाएंगे। अभी सत्ता के तो इतने पड़े हैं और अभी स्थिति इतनी बंदी, अभी ये उत्कृष्ट स्थिति है, तो सत्ता में इतनी उत्कृष्ट स्थिति नहीं हो सकती है। एक समय तो कम हो सकता है कि नहीं, पूर्व में बंधे हुए उसकी स्थिति उतनी कम होगी। इसका आबादा ऐसा है, ये निषेक इसमें मिलेगा, उसके कॉन्टेम्परेरी जो है उसके समान स्थिति वाले उसमें वो मिल जाएगा, परंतु नहीं तो यहाँ कोई आबादा में कोई निषेक ही उदय रूप नहीं, ऐसा अगर कहेंगे तो अच्छा हुआ ना। ज्ञान वर्ण तो उतने काल तक केवल ज्ञान होना चाहिए, सत्ता में पूर्व में बंधे हुए वो उदय रूप हो रहे हैं कि नहीं, हाँ, या अभी बंधे हुए की पोजीशन बता रहे हैं। तो हर समय नहीं तो यहाँ ज्ञानावरण का उदय ही नहीं, ऐसा मानेंगे उदय ही नहीं, ये कब होगा ज्ञानावरण का, वो कहते रहे गुण स्थान में, तो उदय नहीं तो बंधे होने का सवाल कहाँ आया, ख्याल में आती है ना बात। ये अभी एक समय में बंधे हुए की बात बता रहे, हाँ। यहाँ क्या कह रहे देखो, हाँ वो मिथ्यात्व में, अभी ज्ञानावरण में 30 कोड़ी सागर, यानी वो कब तक पड़ा रहेगा सप्ताह में, इतने साल तक पड़ा सकता रह सकता है ना, और हर समय इतना लंबा नहीं बनता है, संकलेश बहुत तीव्र संकलेश है तो इतना बंधेगा, कभी पंचेन्द्र संगी पंचेन्द्रिय मंद, बिल्कुल मंद कशा है, अंत कोड़ा कोड़ी सागर का बंधेगा, तो वहां से लेकर 30 कोड़ी सागर तक कुछ भी बन सकता है, कभी 10 कोड़ी का बांधा, कभी 20 कोड़ी का बांधा, ये हो सकता है, हाँ, क्योंकि उसके जैसे संकलेश या विशुद्ध, यहाँ मैक्सिमम कितना बन सकता है उसकी बात बताए, हाँ। हर बार इतने
आपने जो पूछा 70 कोड़ी का बांधता है, देखो जो जिनेन्द्र भगवान की बात है उससे विरुद्ध प्ररूप न करेगा, जैसा बहन ने कहा कि शुभ भाव करना ही चाहिए, ये तो शुभ भाव नहीं करना चाहिए ऐसी बात है, उल्टा बता रहे, तो वैसा जो कहते हैं उनको ज्ञानावरणी कर्म भी 30 कोड़ी का बंधेगा, क्योंकि तीव्र परिणाम है ना, संकलेश परिणाम है, और केवल बांधने वाला वो है और उनको सुनकर उस रूप परिणमन करने वाले को भी उतना ही नहीं आएगा, एक कर्मकांड पढ़ने का फायदा।
यानी कर्मों की स्थिति हीनाधिक बनती है, उसका जैसे पड़ा है फिर उसका अनुभाग किस रूप से उदय में आएगा, इसके बहुत सारे ऐसे नियम है, हा? कर्म हमको कुछ नहीं करता है, परंतु ये केवल हम ये ज्ञान के गेय है, और ये सहज हमें पता चलता है कि भले ऐसे कर्म क्यों न बांधे हो, आप डरते क्यों हैं, अरे हमने कैसे कर्म बांधे होंगे, कैसे बांधे होंगे, अब क्या करना, अब क्या करना, तो कहती चिंता मत करना, कर्मों के उदय में जो वर्तमान में बातें हो रही, मैं सब उससे जुदा हूँ, पहले ये नक्की करेंगे, ये खूंटा पकड़ेंगे अपने ज्ञायक स्वभाव का, तो वो कर्म भी मंद होकर उदय में आएंगे, क्योंकि जो हम ज्ञायक का आश्रय करते ये तो बहुत विशुद्ध परिणाम है, पूर्व में बंधे हुए कर्मों में भी जो अप्रशस्त है ना पाप रूप कर्म, उनका अनुभव घटेगा ही घटेगा, और पुण्य कर्म जो थोड़ा पुण्य बांधा है वो भी अधिक अनुभव से करके उदय में आएगा, यानी आपके लिए फेवरेबल ही फेवरेबल है सारा, ये जीव नहीं समझता और फिर रोता रहता है, मैंने कैसा कर्म बंधा होगा, अभी उसका क्या होगा। अरे कुछ भी बंधे हो, हमें उससे जुदा है। वो कुछ याद मत करो, जो कुछ बंधा है उससे हम जुदे हैं। अरे हम तो ज्ञायक है, ये कर्म जड़ वो हमें सताए, ये कैसी विचित्रता, वो कुछ नहीं करते हमें। गति बंधी हो तो क्या, आयु भी बंधी हो तो भी क्या, मैं तो कहती हूँ जो कार्य यहाँ चल करते वहां पर भी कर सकते, हम तो वहां पर भी जुदे यहाँ पर भी जुदे। हमें तो हम संयोगों से इतनी एकता हो गई है, ऐसा लगता है नरक में जाने पर क्या, नरक नहीं जाने, क्यों, उस संयोगों से डर है इसलिए नरक नहीं जाना चाहता। स्वर्ग में जाओगे कोई बात नहीं, वहां सम्यक तो कर लेंगे, और नरक में वहां किसी ने रोका है क्या सम्यक तो प्राप्त करने को। अरे हम इनसे जुदे हैं, जो कुछ हुआ है जो कुछ उस छोड़ दो ना, अभी वर्तमान समय में हम राग से जुदे हैं, तो पूर्व में किए हुए राग से भी हम जुदे हैं, ये इसी जुदाई जान लो तो बस, अभी आनंद में रहो ना, और क्या दुख है। ये एक है ना, कल्पनाएं बना बना कर स्वयं दुखी हो रहा है, एक कर्म ये सीख कर भी और नई कल्पनाएं बनाता है, पहले तो जो कुछ थी अज्ञानवश, अभी और नई कल्पना क्या बनता है, मैंने ये बांधा है अभी मुझे नरक में जाना पड़ेगा अभी, अरे ये सब चिंताएं छोड़ दो। ख्याल में आप तो सरल हो, सारी जो कुछ मन में आते वो तो बोल देती, ठीक है उसमें जो हमारी मान्यता में कुछ है बात, हाँ तो उसको हम सुधार सकते हैं।
यहाँ पर जो पश्चाताप हो रहा है कि मैंने ऐसा ऐसा किया था और अभी उसका डर लगता है, तो एक प्रकार से वो सही है और अच्छा है। आपको ये तो ख्याल में रहेगा कि मैंने ये किया था और अभी तो मैं सही रास्ते पे आया हूँ, तो डरने का कारण नहीं है। हाँ बिल्कुल डरना नहीं है, क्योंकि ऐसा है ना, हमने प्रागभाव देखा था ना, प्रागभाव में पूर्व पर्याय का अभाव होता है, तो उसमें आप बिल्कुल चिंता नहीं करना, जो हो गया सो हो गया। हाँ बिल्कुल शांति रखना बहन,
ये मार्ग तो पूरा आनंद का है, यानी उसमें हमारी जो भ्रमणा थी उस भ्रमणा का यहाँ निराकरण हो जाता है। ये भाव करो वो भाव करो ऐसा कहीं है ही नहीं, क्योंकि ये जो भाव है वो तो मेरे से जुदे हैं। पहले मैं ये नक्की करो, पुण्य का परिणाम हो या पाप का परिणाम हो, है तो मेरे से जुदा और मैं उससे जुदा हूँ। वो आने योग्य आएंगे, अभी भी पुण्य परिणाम आएंगे, कभी पाप परिणाम आएंगे, पर मैं उसकी जुदाई अगर ख्याल में लेते हैं तो मैं तो ज्ञायक हूँ, मैं तो ज्ञायक हूँ। ये ज्ञायक वाला जो खूंटा है बार बार अपने ही मन में उसका घुलन होगा।
गर्भों में संक्रमण भी होता है, वो हीने प्रकार के भी हो जाते हैं,
सब हो जाते हैं। और मैंने वो ये तत्व विचार से सब ऑटोमेटिक होता है, उसमें कुछ नहीं करने की जरूरत है, कुछ डरने की भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। अरे वो तो जड़ धूल है और हम चेतन है, हमने ये सब जड़ धूल में अपनापन अभी तक किया है। शरीर क्या है, जड़ धूल है ना, अनंत पर इसके भी अनंत परमाणु, इसके भी समय प्रबद्ध होता है, हर समय हम एक समय प्रबद्ध औदारिक शरीर का भी लेते हैं और उसमें भी निषेक रचना होती है। कहाँ तक, यहाँ तो 30 कोड़ा कोड़ी की हुई, वहां कहाँ तक होगी, जितनी आयु बांध के आए वहां तक। यानी शरीर का हर एक परमाणु की अंतिम स्थिति कितनी है, जो मरण का समय है वहां तक। ये सब ऐसे ऑटोमेटिक बनते हैं और इतनी स्थिति पूरी होने पर वो भले पड़े रहेगा, हम चले जाएंगे अन्यत्र। ख्याल में आती है न, तो ये शरीर से जुदाई, राग से जुदाई, बारंबार इसका अगर हम विचार करेंगे और हम आगम के अनुसार विचार करें, ऐसे कुछ खोटी कल्पना तो नहीं कर रहे। एक तो इस यानी जो कोई शरीर की अवस्था हो उससे तो अपना कोई लेना देना नहीं ना, वो है वहां पर चलेगा, लोग हम उससे पहचानते हैं उसके कारण, परंतु हम उससे जुदे हैं ये बात अगर ख्याल में ले तो हम तो अपने अनंत गुणों से परिपूर्ण है, कोई अधूराश अपने में है ही नहीं है। ये अभी सुख यहां में भी यही बात पढ़ी, अभी आत्मानुशासन में भी यही बात हो रही है ना, जो हमने ये सारे आगमों में पढ़ा है वही बात वहां बता रहे हैं। ये तो डरने का रोने का काम ही नहीं, बिल्कुल आनंद में रहने का काम है। अब ये भी इतनी डिटेल में हम इसलिए कि हमारा नहीं तो उपयोग कहाँ उलझा रहता है, इसमें उपयोग की इतनी सूक्ष्मता होती है, ये कुछ जानने लायक चीज है। और अपने संबंध हम क्या कर रहे थे, क्या हो सकता है, ये बात हमें ख्याल में आती है। हाँ देखो मैंने इस संबंधी अपने अज्ञान का निराकरण हो जाता है, हम इसके संबंधी कुछ नहीं जानते तो खाली भय बना रहता था, अब ये सब जान लिया। और यहाँ तो बताते रहे सम्यक्तु के सन्मुख, सन्मुख किसकी बात आए तो तत्व विचार से आ गई, तो तत्व विचार के काल में इतना सहज हो जाता है, ये कोई 30 कोड़ा कोड़ी 70 कोड़ा कोड़ी कुछ नहीं रहता, सारे अंत कोड़ा कोड़ी बन जाते हैं। और एक बार सम्यक्त हुआ तो अंत कोड़ा कोड़ी ही रहते हैं, और जितने हैं उससे भी कम स्थिति बनती चली जाती है, यानी शुभ कर्मों का अनुभव अपने आप बढ़ता है, अशुभ कर्मों का अपने आप घटता है। अरे हमें उसकी चिंता करना ही नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। देखो यहाँ क्या कहते हैं, देखो नीचे से छठी लाइन पेज नंबर 148, पूर्व सूत्रोक्त कर्मों की यह उत्कृष्ट आबाधा है, यानी ज्ञानावरणादि की तो उन्हें 30 कोड़ा कोड़ी सागर स्थिति बताई थी उत्कृष्ट, उसकी उत्कृष्ट आबाधा 3000 वर्ष की है। एक समय प्रबद्ध अपने असंख्यातवे भाग प्रमाण 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम स्थिति वाले पुद्गल स्कंदों से सहित होता हुआ क्या कहना चाहते हैं? अभी ये समय प्रबद्ध की बात करते हैं, हम मान लेते हैं ये जो अंतिम निषेक है उसकी स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी सागर, कहां से? बंध के समय से लेकर, ये बंध का समय है और ये काल कितना, यहां से 30 कोड़ा कोड़ी सागर, और इसमें कितने परमाणु है? अनंत है, परंतु टोटल जितने बंधे उसका वो असंख्यात भाग है। क्यों? टोटल जितने कर्म बंधे है वो 30 कोड़ा कोड़ी सागर माइनस 3000 वर्ष इतने निषेकों में बढ़ गए, तो उसमें कितने समय हो गया? असंख्यात, क्योंकि सागर में समय कितने होते हैं? असंख्यात होते, भले वो उसके आगे कोड़ा कोड़ी लगा लो फिर भी वो असंख्यात ही रहेंगे। यानी अंतिम निषेक में समय प्रबद्ध का असंख्यात भाग प्रमाण पुद्गल परमाणु है अनंत, परंतु टोटल जो लॉट है उसका असंख्यात भाग है। ये ख्याल में, ये वाक्य का अर्थ समझ लो तो कोई परेशानी नहीं होगी। फिर पढ़ते इसको, देखो। एक समय प्रबद्ध अपने असंख्यात भाग प्रमाण 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम स्थिति वाले पुद्गल स्कंधों से सहित होता हुआ अपकर्षण के द्वारा बिना स्थिति क्षय के इतने अर्थात 3000 वर्ष प्रमित काल तक उदय को नहीं प्राप्त होता है, यह अर्थ कहा गया। क्या कहना चाहते हैं? यानी जिस समय प्रबद्ध में, उस समय प्रबद्ध के असंख्यात वे भाग प्रमाण परमाणु 30 कोड़ा कोड़ी सागर स्थिति वाले है, उस पूरे समय प्रबद्ध के लॉट की बात करते हैं, सहित होता हुआ अपकर्षण के द्वारा बिना स्थिति क्षय के इतने काल तक उदय को नहीं प्राप्त होता है। अपकर्षण के द्वारा बिना स्थिति क्षय के, नहीं, इसकी स्थिति क्षय होकर अभी आवली के बाद क्या हो सकता है, इसमें से कुछ कुछ परमाणु ऐसे नीचे आकर इसके साथ उदय में आ सकते हैं, अगर उसकी बात करो मत तो ये निषेक कब उदय में आएगा? 3000 वर्ष और एक समय में इसमें से कुछ परमाणु खिर सकते हैं, स्थिति का पूरा निषेक 3000 वर्ष के बाद आएगा। नहीं नहीं, वो यहाँ मिला तो 3000 वर्ष के ऊपर ही मिला, परंतु उसमें से कुछ परमाणु, जैसे हमने वो चौक पकड़ा है हाथ में कुछ लग गए ना, तो ऐसे इसमें से कुछ परमाणु एक आवली के बाद उदय में आते, जिसको कहेंगे उदीर्णा से उदय होना, उसकी अपेक्षा मत लो। तो ये निषेक, पूरा निषेक कब उदय में आएगा? 3000 वर्ष और एक समय में, ये कहना चाहते हैं। तो यहाँ लिखा है ना, अपकर्षण के द्वारा बिना स्थिति क्षय के, यानी अपकर्षण होकर स्थिति क्षय होकर उदय में आता है उसकी बात छोड़ दो, ये अपने आप कब उदय में आएगा? 3000 वर्ष और एक समय में, अर्थात 3000 वर्ष प्रमित काल तक उदय को नहीं प्राप्त होता, यह अर्थ कहा गया है। समझ में आई इसका अर्थ? समय प्रबद्ध जब हुआ है तभी उसकी क्या पोजीशन है वो बता रहे। एक समय कम 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, दो समय कम 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम इत्यादि क्रम से एक समय हीन आबाधा कांडक से कम 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम प्रमित उत्कृष्ट स्थिति तक के पुद्गल स्कंधों की भी यही यानी 3000 वर्ष प्रमाण आबादा होती है, यानी सबके लिए आबादा कितनी है? 3000 वर्ष। ये कहते ये इतना ऊपर पड़ा है, उसकी तो आबादा बता ही गई, ये एक समय कम वाला है, दो समय कम वाला है, तीन समय कम वाला है, उसकी भी सबकी आबादा कितनी है उतनी ही बताइए। उसमें एक शब्द और आया था, देखो आबादा कंडक क्या कहा, एक समय कम, दो समय कम इत्यादि क्रम से एक समय हीन आबादा कंडक से कम 30 कोड़ाकोड़ी सागरोपम प्रमित उत्कृष्ट स्थिति तक के पुद्गल स्कंधों की भी 3000 वर्ष प्रमाण आबादा होती है। अब कहते हैं एक समय कम, दो समय कम, ये पूरा आबादा कांड अनेक स्थितियों के लिए उतनी ही आबादा होती है, उसको कहते हैं आबादा कांड। फिर से देखो, अभी हम आपको बताते हैं, ये आबादा है, आबादा कांड किसको कहना, ये कह रहे ये 30 कोड़ाकोड़ी सागर के लिए इतनी आबादा, एक समय कम वाले निशक के लिए भी इतनी आबादा, दो समय कम वाले की इतनी आबादा। तो उन्होंने क्या कहा, एक समय हीन आबादा कांडक से कम, यानी ये आबादा कांडक इतने सारे स्थितियों के लिए सेम आबादा होती है, उसको कहेंगे आबादा कांडक। देखो आगे ये बताएंगे आबादा कांड किसे कहते हैं, यहाँ से हम पढ़ेंगे आपको समझाने में मुझे आसान हो जाएगा। पेज नंबर है 149। देखो आबादा तो हमने देखा क्या होता है, आबादा कांड किसको कहना, तो अनेक स्थितियों के लिए सेम आबादा होती है, वो अनेक स्थितियों का जो प्रमाण है उसको कहेंगे आबादा कांड। ख्याल में आते देखो यहाँ कुछ बताएंगे, यहाँ की जो उन्होंने दृष्टांत दिया उसको पहले लेंगे, फिर मैं अपनी भाषा में बताऊंगी। शंका, आबादा कांडक की उत्पत्ति कैसे होती है, कांडक किसको कहना, आबादा तो समझ में आया, कांडक क्यों कह रहे हैं। समाधान, उत्कृष्ट आबादा काल को विरलन करके ऊपर उत्कृष्ट स्थिति के समान खंड करके उत्कृष्ट जो स्थिति बंदी उसके समान खंड करके एक एक रूप के प्रति देने पर आबाधा कांडक का प्रमाण प्राप्त होता है। अभी उन्होंने मान लो कह के बताया साधे शब्दों में, छोटी संख्या में, मान लो उत्कृष्ट स्थिति 30 समय और आबाधा 3 समय, तो क्या कहा हमने आबाधा को विरलन करेंगे, तो 3 में विरलित कर दिया, एक 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 3 बार लिखा, और ऊपर 30 को 3 में डिस्ट्रीब्यूट करना तो हर एक के माथे पर 10-10 आ जाएंगे, अर्थात 30 को 3 से भाग दिया तो 10, यह आबाधा कांडक का प्रमाण हुआ और उक्त स्थिति बंध के भीतर 3 आबाधा के भेद हुए, यानी 10-10 निषेकों के लिए उतने उतने आबाधा हो जाएंगे। समझ में, इन्होंने क्या क्या कहा, ये 30 समय की स्थिति बताई और उसके लिए 3 समय की आबादा दी, तो उसमें लिए ऊपर 30 से लेकर 21 तक 10 नीचे के है उसकी आबादा 3 समय, नीचे के है उसकी आबादा 2 समय और नीचे के उसकी आबादा 1 समय, इस तरह से अनेक स्थितियों के लिए उतनी की उतनी आबादा रहती है। एक समय कम स्थिति तो उसके लिए आबादा में एक समय का कम ऐसा नहीं होगा, नहीं नहीं नहीं, स्थिति जुदी जुदी है, आबादा उतनी ही है, यानी जितने अलग अलग स्थितियों के लिए सेम आबादा होती है उसने सब निशेकों की संख्या को आबादा कांडक कहेंगे। हाँ आबादा कांडक, यहाँ हमने इस उदाहरण में 10 निशेकों को यहाँ आबादा, हाँ 3000 वर्ष विरलन कर दिए, 30 कोड़ाकोड़ी सागर उसमें, हाँ जैसे यहाँ पर बताया उन्होंने। आबादा काल है, आबादा कांडक यानी इतने निशकों के लिए उतना का उतना आबादा और नीचे के इतने निशकों के लिए उसकी आबादा जुदी, और नीचे के निशिकों में उसकी आबाधा जुदी, इस तरह से। विशेषार्थ बताते, कर्म स्थिति के जितने भेदों में एक प्रमाण वाली आबाधा होती है, बताए ना। कर्म स्थिति के भेद यानी अलग अलग निषेक, नंबर ऑफ निषेक हम कहेंगे, एक प्रमाण वाली आबाधा होती है, उतने स्थिति भेदों के समुदाय को यानी उतने निषेकों की संख्या को आबाधा कांडक कहते हैं। नंबर ऑफ, इतने नंबर ऑफ स्थितियां हैं जुदी जुदी, उसके लिए आबाधा वही की वही है। विवक्षित कर्म स्थिति में आबाधा कांडक का प्रमाण जानने का उपाय यह है कि विवक्षित कर्म की उत्कृष्ट स्थिति में उसी की उत्कृष्ट आबाधा का भाग देने पर जो भजन फल आता है, यानी जो भागहार का जो उत्तर आता है, तत्प्रमाण ही उस कर्म स्थिति में आबाधा कांडक होता है। जैसे ऊपर उन्होंने उदाहरण बताया 30 समय, और उसको 3 आबाधा से भाग दो तो आबाधा कांडक 10 का हो जाएगा। यही बात प्रकृत में विरलन देय के क्रम से समझाई गई। ये विरलन देय आप शब्द भूल जाओ, उत्कृष्ट स्थिति डिवाइडेड बाय उत्कृष्ट आबाधा इज इक्वल टू आबाधा कांडक। उत्कृष्ट स्थिति डिवाइडेड बाय उत्कृष्ट आबाधा, देखो आबाधा कांडक इज इक्वल टू उत्कृष्ट स्थिति डिवाइडेड बाय उत्कृष्ट आबाधा। हाँ, आबाधा का जो प्रमाण है, उत्कृष्ट स्थिति का जो प्रमाण है डिवाइडेड बाय उत्कृष्ट आबाधा का प्रमाण इज इक्वल टू आबाधा कांडक। देखो हम अगर ऐसा एक उदाहरण देखेंगे, दूसरा हम ले लेते ना, मान लेते 60 समयों की स्थिति बंदी और उसका आबाधा हम लेते हैं 12 समय, समझने के लिए। तो एक कांडक का प्रमाण कितना होगा? 5। तो 60, 59, 58, 57, 56 इन सब के लिए आबाधा होगी वो 12 समय की। अभी आबाधा में एक समय कम हो जाएगा कब? 55, 54, 53, 53, 52 और 51 इसके लिए आबाधा होगी 11 समय की। यही होता है ना, 55 डिवाइडेड बाय 11 5 हो जाता है। उसके आगे 50, 49, 48, 47, 46 उसकी आबाधा होगी 10। यानी ये इतने इतने निषेकों के लिए उतनी उतनी आबाधा होती है। आबाधा इमीडिएटली ने, इतने सारे निषेकों के लिए आबाधा उतनी है, इसको कहेंगे आबाधा कांडक। आबाधा कांडक यानी नंबर ऑफ निषेक जिनके लिए उतनी की उतनी आबाधा पाई जाती है, उसका नाम है आबाधा कांडक। ये सब हमने सीखा है कर्मकांड में, अभी भूल गए। शिविर में तो बहुत मुझे याद है, सारे हमने इसे चार्ज बना के वहां समझाया था। अब आना शिविर में, ये सब आएगा उसमें। हाँ देखो, आबाधा कांडक कहते हैं विशेषार्थ की दूसरी लाइन, विवक्षित कर्म स्थिति में आबाधा कांडक का प्रमाण जानने का उपाय यह है कि विवक्षित कर्म की उत्कृष्ट स्थिति में उसी की उत्कृष्ट आबाधा का भाग देने पर जो भजन फल आता है तत्प्रमाण ही उस कर्म स्थिति में आबाधा कांडक होता है। अभी ये समझ में है ना इसका अर्थ? यही बात प्रकृत में विरलन देय के क्रम से समझाई गई। उसी को आबाधा का विरलन करो और उत्कृष्ट स्थिति उसमें देय रूप से दे दो, ये बात वही की वही है। इस प्रकार जितने स्थिति के भेदों का एक आबाधा कांडक होता है उतने स्थिति भेदों की आबाधा समान होती है। उतने स्थिति भेद यानी उतने निषेक, स्थिति के भेद एक एक समय के अंतर से स्थिति के भेद यानी उतने निषेक हमारी भाषा में कहेंगे। यह कथन नाना समय प्रबद्धों की अपेक्षा है। उन कर्म स्थिति के भेदों में ये कहते हैं नाना समय प्रभु देने मान लेते कभी, जब अभी हमने जो उदाहरण दिया था किसी ने 60 समयों की स्थिति बांध दी तो उसका आबाधा का प्रमाण होगा 12। किसी ने मान लेते हैं 58 समय की स्थिति बांधी उसके लिए भी आबाधा 12 ही होगा। किसी ने 55 समय बांधी उस समय प्रबद्ध के लिए आबाधा का 11 होगा, और उसने 55 के बदले 51 भी बांधी तो भी उसका आबाधा 11 होगा। ये उसका अर्थ होता है, ये लिखा ना नाना समय प्रबद्धों की अपेक्षा, क्योंकि एक समय प्रबद्ध में तो आबाधा निश्चित है, जो उत्कृष्ट स्थिति है उसके लिए उत्कृष्ट आबाधा। अभी मान लेते हैं कि 30 कोड़ाकोड़ी के बदले 10 कोड़ाकोड़ी सागर ही बांधी तो उसका 1000 वर्ष आबाधा हो जाएगा। कल में उन कर्म स्थिति के भेदों में एक समय दो समय आदि के क्रम से जब तक एक समय हीन आबाधा कांडक मात्र तक स्थितियां उत्कृष्ट स्थिति से कम होती है तब तक उन सब स्थिति विकल्पों की वही अर्थात 3000 वर्ष प्रमित उत्कृष्ट आबाधा होती है। यही जो अभी हमने देखा, अभी हमने जो उदाहरण बताया ना उसकी यहाँ हम वैल्यू डालेंगे। उन कर्म स्थिति के भेदों में अभी हमने 60 समय वाली देखी, एक समय कम दो समय कम आदि के क्रम से, जो हमने एक समय कम 59 है 58 है 57 है आदि के क्रम से जब तक एक समय हीन आबाधा कांडक, हमारा आबाधा कांडक 5 का है, एक समय कम करो तो 4 हो गया, तो 4 से हीन तक स्थितियां उत्कृष्ट स्थिति से कम होती है, यानी 4 तक की कम होती है, यानी 4 कम किए तो आ गए ना 56 आ गए, तो 56 तक की, एक तो उत्कृष्ट स्थिति दिखी नहीं, आबाधा कांडक 5 का है तो उसमें और 4 बार एक एक कम कर दो तो 56 तक की स्थितियां। यहां हम अपनी वैल्यू ऐड कर रहे हैं, यानी जैसे देखो 60 में से एक कम दो कम आदि क्रम से जब तक एक समयहीन हमारा आबाधा कांडक है 5 का, यानी 4 समयहीन तक स्थितियां, यानी 56 तक की स्थितियां उत्कृष्ट स्थिति से कम होती है तब तक उन सब स्थिति विकल्पों की वही यानी 3000 वर्ष हमारे यहाँ 12 समय उत्कृष्ट आबाधा होती है। एक आबाधा कांडक से हीन उत्कृष्ट स्थिति को बांधने वाले अब देखो ये 60 के बदले एक आबाधा कांडक से हीन उत्कृष्ट स्थिति बांधी, इतनी बांधी उसने स्थिति, यानी 60 के बदले 55 बांधी, एक आबाधा कांडक से हीन बांधी स्थिति 55 बांधी तो उसके लिए आबाधा कितनी होगी, एक समय से कम होगी। देखो क्या कहना चाहते हैं, एक आबाधा कांडक से हीन उत्कृष्ट स्थिति को बांधने वाले समय प्रबद्ध के, यानी वो अन्य समय प्रबद्ध है, उसके एक समय कम 3000 वर्ष की आबाधा होती है। ये एक्चुअल में जो 30 कोड़ाकोड़ी सागर डिवाइडेड बाय 3000 वर्ष जो कोई वहां प्रमाण आएगा, कैसे करेंगे हम 30 कोड़ाकोड़ी सागर है वो भी डिवाइडेड बाय 3000, ये चला जाएगा एक 100 अंश, कोड़ाकोड़ी सागर का 100वां हिस्सा, उसमें से 2 जीरो कम करना, कोड़ाकोड़ी में 14 जीरो है एक के ऊपर तो एक के ऊपर 12 जीरो करना, इतने सागर वर्षों के कम इतना कम स्थिति बांधेगी तो उसके लिए आबादा कितनी होगी, 3000 वर्ष माइनस एक समय, ख्याल में आई ना बात, यानी इतने सारे स्थितियों के लिए उतनी ही आबादा होगी 3000 वर्ष की। इसी प्रकार सभी कर्म स्थितियों की भी आबादा संबंधी प्ररूपणा जानकर करना चाहिए, विशेषता केवल यह है कि दो आबाधा कांडकों से हीन उत्कृष्ट स्थिति को बांधने वाले जीव के समय प्रबद्ध की उत्कृष्ट आबाधा दो समय कम होती है, यानी 3000 वर्ष माइनस दो समय, समझ में नहीं क्या क्या बात हो रही है। अभी हमने क्या देखा था, 60 समय बांधने वाले की 12 है, एक कांडखीन यानी 55 वाले बांधने वाले की 11 है, उसमें दो कांडखीन इसमें से 10 समय कम कर दो, 50 समय बांधने वाले की इसमें से 2 समय कम कर दो, 10 समय बांधा है। ऐसे एक्चुअल में वो फिगर्स लेना, 30 कोड़ा कोड़ी सागर डिवाइडेड बाय 3000 वर्ष, वो भी वर्ष है, वर्षों के भी समय गिनने पड़ेंगे वहां पर, है ना। और उसमें से एक एक समय कम कर देना, खाली 3000 में से एक समय कम, इस तरह से 3000 वर्ष है, वर्षों में तो समय कितने असंख्यात हो गए, उसमें से एक समय कम कर देना। अन्य समय प्रबद्ध के लिए, हर बार वो 30 कोड़ा कोड़ी का नहीं बांध रहा है, हर बार वो कम, कभी ना कभी कम होगा ना, हेनादिक बांधता रहता है, जैसे उसके संकलेश विशुद्ध है वैसे वैसे, कभी 20 कोड़ा कोड़ी सागर के बांधेगा तो 2000 वर्ष होगी इस तरह से। हाँ, यानी वो प्रोपोर्शनेट टू स्थिति, पर एग्जैक्टली उसको अनेक स्थितियों के लिए उतनी की उतनी आबाधा होती, ये बताना चाहते, उसको आबाधा कांडक कहेंगे। दस बज गए। तीन आबाधा कांडकों से ही उत्कृष्ट स्थिति को बांधने वाले जीव के समय प्रबद्ध की, और जुदा समय प्रबद्ध है, उत्कृष्ट आबाधा 3 समय कम होती है। 4 आबाधा कांडकों से हीन उत्कृष्ट स्थिति को बांधने वाले, यानी स्थिति कितनी बांधी, 4 आबाधा कांडक से हीन इतनी बांधी, उस समय प्रबद्ध की उत्कृष्ट आबाधा 4 समय कम होती है। इस प्रकार यह क्रम विवक्षित कर्म की जघन्य स्थिति तक ले जाना चाहिए। अभी अंत कोड़ा कोड़ी सागर बांधेगा तो उसका अंतर्मूर्त हो जो वहां तक चले जाना। इस प्रकार सर्व आबाधा कांडकों के विचार ने पलटना, स्थानत्व अर्थात स्थिति भेदों को प्राप्त होने पर, यानी आबाधा के भी भेद बताएंगे ना, उत्कृष्ट आबाधा 1 समय कम, 2 समय कम, 3 समय कम, जो मिनिमम आबाधा, आबाधा के भी भेद हो गए, आबाधा के भेद तो एक एक समय से कम हो गए और वहां पर एक एक कांडक कम होता चला जाएगा, यानी उत्कृष्ट और जघन्य में जितना भेद हो गए आबाधा के, उतने वहां कांडक बनेंगे, एक कांडक, दो कांडक, तीन कांडक। तो आबाधा कांडकों के यानी स्थिति भेदों को प्राप्त होने पर एक समय कम आबाधा कांडक मात्र स्थितियों की आबाधा अवस्थित अर्थात एक सी होती है, यह अर्थ जानना चाहिए। अब उसका उदाहरण कल देखेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो।